शांति। संकल्प शक्ति यह आत्मा का बहुत बड़ा खजाना है और हमें इसकी बचत करनी चाहिए। जिस प्रकार हम धन की बचत के लिए योजना बनाते हैं, सरकार कई प्रकार की सेविंग स्कीम्स बनाती है, इसी प्रकार संकल्प रूपी धन की भी बचत आवश्यक है। अगर हम सुबह से लेकर रात्रि तक अपने संकल्पों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हमारे कितने संकल्प व्यर्थ जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक चिंतन करते हैं, परमात्मा को अपने मन में स्थान देते हैं, शुद्ध आहार खाते हैं, श्रेष्ठ संग करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करना जानते हैं, तो हम अपने संकल्पों की बचत कर सकते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत प्रकार के आते हैं। कई बार बीती हुई बातों के संकल्प आएंगे जिनकी इस समय कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम फारिग बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो हम बीती बातों का चिंतन करते हैं। और कई बार दुखद घटनाएं जो जीवन में बीत गई है उनकी याद आती है और उनको याद करते करते कभी रो भी लेते हैं, और कभी ये भी सोच लेते हैं कि अगर ये नहीं होता तो शायद ये न होता, अगर ये नहीं करते होते तो शायद ये नहीं हमें मिलता। अर्थात बीती बातों की चिंता करते रहते और फलस्वरूप दुखी होते रहते हैं। वास्तव में जब हम अपने मन को शुद्ध करने की बातें सोचते हैं तो हमें बीती बातों का बिल्कुल चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें तो यह सोचना चाहिए कि जो कुछ बीत गया वो बहुत अच्छा बीता, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक अनुभव हमारा बढ़ा और उसके पीछे भी कोई राज था, कोई कल्याण समाया था। शायद अभी मुझे उस राज और कल्याण का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे चल करके हमें पता चलेगा कि इसमें क्या भलाई समाई हुई थी। अच्छा, और कोई भलाई न भी समाई हुई हो, कम से कम मैं अनुभवी तो बन गई। इसी प्रकार के सोच के आधार से हमें बीती बातों का चिंतन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय भी तो एक धन है। अगर हम बीती बातों का ही चिंतन करने बैठेंगे तो संकल्प तो व्यर्थ जाएंगे ही, लेकिन हमारा समय भी व्यर्थ जाएगा और हमारी शक्ति भी व्यर्थ जाएंगी। मान लीजिए हम बीती बातों को याद कर रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो अवश्य शारीरिक शक्ति भी व्यर्थ हो रही है, तो मानसिक शक्ति भी व्यर्थ हो रही है। तो केवल समय ही बर्बाद नहीं हुआ, संकल्प ही बर्बाद नहीं हुए, लेकिन शक्ति भी बर्बाद हो गई। तो इसीलिए बीती बातों को तो बिल्कुल याद नहीं करना चाहिए, बीती बातों को तो ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे वो किसी पुराने जन्म की बातें थी। जैसे आप पिछले जन्मों को तो नहीं जानते हो, आपको ये नहीं मालूम कि आप पूर्व जन्म में कौन थे, इसी प्रकार कल जो बीत गया उसको ऐसे भूल जाओ जैसे कि कोई बीते हुए जन्म की बात थी। लेकिन उस भूलने के लिए आज में जियो, अर्थात वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ, वर्तमान को इतना ऊंचा बनाओ जो वर्तमान एक यादगार बन जाए आपके लिए, तो अवश्य आप पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूल सकेंगे। कई बार ऐसे भी होता है जो पिछली बातें तो याद नहीं आती लेकिन भविष्य के बारे में बहुत चिंता लगी रहती है। हम ये सोचते हैं पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं ये अच्छा होगा या बुरा होगा, पता नहीं इसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं ये काम मेरा होगा भी या नहीं होगा, अर्थात भविष्य में क्या होने वाला है या नहीं होने वाला है उसकी भी चिंता। और कई बार तो हम चिंता से इतने ग्रसित हो जाते हैं जो चिंता करना जैसे हमारा स्वभाव बन जाता है। केवल हम अपनी ही चिंता नहीं करते लेकिन सबकी चिंता करने लग पड़ते हैं, जैसे कि सभी का ठेका मैंने उठाया है, अपने परिवार की भी चिंता नहीं लेकिन पड़ोसियों की चिंता, इनकी चिंता, उनकी चिंता, सबकी चिंता का बोझ हम अपने सिर पर ले लेते हैं और यही सोचते रहते हैं पता नहीं इनका क्या होगा, पता नहीं उसको मिलेगा या नहीं। अर्थात हम व्यर्थ संकल्प केवल बीती बातों की ही का ही नहीं करते लेकिन भविष्य का भी व्यर्थ संकल्प करते रहते हैं, तो इसमें भी हमारी शक्ति और श्वास बहुत व्यर्थ जाता है, समय तो व्यर्थ जाता ही है। तो अगर हम अपने संकल्पों की बचत करना चाहते हैं तो कुछ बातें हम आपको देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जो बीत गया उसको ऐसे भूल जाओ जैसे कि एक स्वप्न था। जिस प्रकार आप एक स्वप्न देखते हो, स्वप्न तो रात को देखा और सुबह उठे वो स्वप्न हो गया, बीत गया, खत्म हो गया, वो रियलिटी नहीं थी। तो जो बीत गया उसको आप स्वप्न समझो और स्वप्न का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसके बाद जो आने वाला है उसकी चिंता करने की बजाय वो परमात्मा पर छोड़ दो, अपनी बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि कर्म करना आपका कर्तव्य है लेकिन फल देना ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए उनके कार्य में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है और हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे कर्म का फल होगा, जितना हमने बीज बोया होगा उसी अनुसार ही हमें फल मिलेगा। इसीलिए हमें भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए लेकिन हाँ कर्म अवश्य श्रेष्ठ करने चाहिए और कर्म कर लेने के पश्चात उस कर्म को हमें परमात्मा को सुपुर्द करना चाहिए, अर्थात अपनी बुद्धि को इतना समर्पित कर दो परमात्मा पर और उन पर भरोसा रखो, विश्वास रखो कि जो कुछ होगा उसमें भी कल्याण होगा। जो बीत गया उसमें तो कल्याण था ही, शायद आज मुझे नहीं मालूम कि क्या कल्याण है, कल पता चल जाएगा, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसमें भी कल्याण ही समाया हुआ है। वास्तव में परमात्मा कभी भी किसी का अकल्याण नहीं कर सकता क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है और हम सभी उनके बच्चे हैं, तो परमात्मा हम बच्चों के लिए अकल्याण का कार्य कैसे कर सकता है। तो अपने पर भी विश्वास हो कि मैं ठीक कार्य करूं और परमात्मा पर भी विश्वास हो कि परमात्मा हमें जो फल देगा उसमें भी कल्याण होगा। तो न बीती की चिंता न आगे की चिंता, अर्थात मन में उनके लिए यही सोचो जो बीत गया वो भी अच्छा हुआ, जो आएगा वो भी अच्छा ही आएगा और वर्तमान तो है ही अच्छा क्योंकि वर्तमान बीती के आधार पर बनता है और वर्तमान के आधार पर भविष्य बनता है। तो अगर मेरी बीती और मेरा भविष्य दोनों में ही कल्याण है तो वर्तमान में तो कल्याण है ही है, क्योंकि वर्तमान अकेला नहीं है, बीता अर्थात भूत और भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है वर्तमान। तो अगर भूत और भविष्य कल्याणकारी है तो वर्तमान तो कल्याणकारी है ही। तो हमें न बीती का चिंतन करना है न भविष्य की चिंता करनी है। कई बार हम चिंताएं यूं ही कर लेते हैं, कारण कोई न कोई मोह के वश, कोई न कोई आसक्ति के वश, कोई न कोई अहंकार के वश। कभी कभी ये सोच चलता है कि अगर मुझे फायदा नहीं मिला, अगर मेरा नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अर्थात लोक लाज भी सताती है। ये है वास्तव में मनुष्य का अपना अभिमान। उस अभिमान को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, इसलिए मन में सोच चलता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम लोगों के बारे में कभी न सोचें। कभी हमने ये भी सोचा है कि भगवान क्या कहेगा। हम इंसान के बारे में तो सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या कहेगा, वो व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे लिए, लेकिन कभी ये भी सोचा कि भगवान मेरे लिए क्या सोचेगा, भगवान मेरे लिए क्या कहेगा। क्योंकि हम उनको देखते नहीं, इसलिए हम उनके विषय में सोचते भी नहीं, लेकिन परमात्मा हमें सदा देख रहा है और कल्याणकारी दृष्टि से ही देख रहा है। कभी भी अकल्याण की दृष्टि से परमात्मा हमें नहीं देखता, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। जैसे लौकिक में हम देखते हैं बच्चे चाहे कितने भी नटखट क्यों न हो, चंचल क्यों न हो, लेकिन उनके माता पिता सदा उनके कल्याण के प्रति ही दृष्टि रखते हैं, उनका कल्याण ही सोचते हैं। तो परमात्मा भी हमारे कल्याणकारी पिता हमारा कल्याण ही चाहते हैं। और हम सदा सोचें कि हर एक बात में कोई कल्याण छिपा हुआ है। एक प्रसिद्ध कहानी आती है अकबर और बीरबल की। एक बार की बात है कि दोनों जंगल से गुजर रहे थे और अकबर ने शिकार करने की खातिर अपनी तलवार निकाली, लेकिन तलवार भूल से उसकी उंगली को लगी और उसकी उंगली से खून निकलने लगा। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं राजन, इसमें कोई कल्याण होगा। अकबर को गुस्सा आया और उसने सिपाहियों से कह करके बीरबल को जेल में डलवा दिया और अकेले जंगल की ओर जाने लगा। अचानक कुछ अघोरी लोग वहां पहुंचे और उसे पकड़ के अपने सरदार के पास ले गए और यही लक्ष्य लेकर गए कि इसकी आज बलि चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही सरदार ने उसका परीक्षण किया तो उंगली से तो खून निकल रहा था। तब उनके सरदार ने कहा कि ये बलि स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि ये खंडित हो गई है। अब अचानक अकबर को याद आया कि आज अगर मेरी उंगली नहीं कटती होती तो कहीं मेरी बलि न चढ़ जाती होती। तो अच्छा हुआ, कल्याण था कि मेरी उंगली कटी और मेरी बलि तो नहीं चढ़ी। और वह सीधा अपने राज्य में गया और बीरबल के पास पहुंचकर बीरबल से माफ़ी मांगी कि बीरबल, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे जो मैंने तुझे जेल में डाला, और सचमुच कितना बड़ा कल्याण समाया हुआ था मेरी उंगली कटने में। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो मेरी आज बलि चढ़ जाती होती, इसलिए बीरबल मुझे माफ़ कर दे जो मैंने तुझे जेल में डाला। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं राजन, इसमें भी कल्याण था। अगर आप मुझे जेल में नहीं डालते होते तो शायद आपके बजाय मेरी बलि चढ़ जाती होती, क्योंकि मैं तो आपके साथ ही रहता। तो देखिए कितना बड़ा कल्याण था हर कर्म में। तो इसी प्रकार अगर हम अपने मन में ये सोचते हैं कि जो हुआ उसमें कोई कल्याण था, और जो होने वाला है उसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और वर्तमान में हम ये सोचें कि हमें जितना अच्छा कर्म करना चाहिए उतना ही मैं कर सकूं, ये इसमें ही मेरा कल्याण है। तो जब हम ये बातें सोचेंगे तो अवश्य एक निरसंकल्प स्थिति आएगी। मन में हम शुद्ध संकल्पों का बार बार रमण करते रहेंगे। कई बार हम फ्री बैठे होते हैं तो हम हवाई किले बांधते रहते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब हवाई किले तो हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें भी हम समय क्यों बर्बाद करें? जब समय आएगा हम उसके विषय में सोचेंगे, अब हम क्यों अपना समय उसके पीछे दें? तो हवाई किले भी कभी नहीं बांधने चाहिए, क्योंकि हम फ्री बैठे हैं तो उस समय हमें शुद्ध चिंतन में अपना समय देना चाहिए। आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, अपने गुणों का चिंतन, अपने धाम का चिंतन, ये चिंतन कीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि वो समय भी आपका बहुत श्रेष्ठ रीति से गुजर गया, तो साथ साथ आत्मा में शक्ति भी जमा हो गई। कई बार आप साधारण कर्म करते हो जिनमें आपको बहुत बुद्धि चलाने की आवश्यकता नहीं, तो उस समय आपके हाथ काम करे लेकिन मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ ले जाओ। जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, महिला है, सफाई कर रही है या स्वेटर बुन रही है, इसमें आपको बुद्धि ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं, उस समय तो मन कई बार भटकता ही रहता है। तो जब आप कोई साधारण कर्म करते हैं उस समय सोचो, ये हाथ साधारण कर्म कर रहे हैं लेकिन मैं आत्मा तो बहुत ऊंची श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, उस समय ये सोचें कि जैसे मैं इस वाहन को चला रहा हूँ वैसे मैं आत्मा वास्तव में इस शरीर को चला रही हूँ। आप भोजन पका रहे हैं उस समय ये सोचे कि जैसे मैं ये शरीर के लिए भोजन पका रही हूँ वैसे आत्मा का भोजन शुद्ध संकल्प है। तो हर बात में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और कर्म साधारण होंगे लेकिन आपके संकल्प बहुत श्रेष्ठ होंगे। और ऐसे भी नहीं कि अगर आप श्रेष्ठ संकल्प करने बैठे तो जो आपका काम चल रहा है वो बिगड़ जाएगा। मान लीजिए आप रोटी पका रहे हैं और आपने परमात्मा को याद किया, शुद्ध संकल्प किया, तो आपकी रोटी कभी नहीं जलेगी। आप परमात्मा की याद में कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। कई बार एक्सीडेंट्स हम क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते समय कुछ और सोच चलता है तो मन चंचल हो जाता है और हाथों का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो अगर हम परमात्मा की याद में हैं, श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, तो उसी समय अगर कुछ गलत काम होना भी होगा तो एक टचिंग आएगी हमें परमात्मा से और हम तुरंत अपने आप को बदल देंगे, अर्थात योग द्वारा कर्मों में कुशलता आएगी। इसीलिए कहा गया योगः कर्मेषु कौशलम्, अर्थात योग करने से, मन की एकाग्रता से, परमात्मा में मन टिकाने से हमारे कर्म कुशल होते हैं। हमें अधिक सोचने की भी आवश्यकता नहीं। कई बार हम जो याद करना चाहते हैं उसको भूल जाते हैं और जो हमें भूलना चाहिए वो याद रहता है। तो जब हम अपने मन को शुद्ध संकल्प देते हैं तो आवश्यक संकल्प समय पर अपने आप आ जाते हैं। हमें ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता, वो जैसे टचिंग के रूप में ईश्वर की प्रेरणा द्वारा हमें वो संकल्प आ जाता कि हमें इस समय क्या करना है। कई बार हमें कई बातों में मन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, न्यारा बन जाना बहुत अच्छा है। दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा चल रहा है, वास्तव में हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, एक साक्षी दृष्टा स्थिति भी एक बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि हमारा उनसे मतलब नहीं है। हम फिल्म देखने जाते हैं, देखते हैं कोई विलियन का रोल बजा रहा है, कोई हीरो का रोल बजा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तो हम उनके साथ हंसते या रोते नहीं हैं। हम साक्षी दृष्टा होकर के उस फिल्म को देखते हैं, ड्रामा को या नाटक को देखते हैं। इसी प्रकार हमें भी अगर एक निरसंकल्प स्थिति बनानी है, अपने संकल्पों को शुद्ध करना है, अपने विचारों की बचत करनी है, शक्ति को गंवाना नहीं है, तो एक न्यारी स्थिति, एक साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास कीजिए, जिसको हम कई बार कहते हैं देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। यह है साक्षी भाव की स्थिति। हम जब देखते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, सुनते हैं तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। किसी ने मुझे किसी की ग्लानी सुनाई, मैं उसके प्रभाव में आ जाऊं, ये गलत बात है। प्रभाव में आकर के फिर उस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न करूं, ये गलत बात है। चाहे किसी ने मुझे किसी की ग्लानी भी की, अच्छा एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, इसलिए ये दो कान भगवान ने हमें दिए हैं। अगर बुराई सुनी भी तो चित पर मत रखो, मन पर मत रखो, उसको दूसरे कान से निकाल दो। हाँ, अच्छी बात सुनी तो दोनों कानों से सुनो, और अच्छी बात लगी तो मुख से अवश्य सुनाओ, लेकिन कोई बुरी बात है तो उसको अंदर में समा दो, सब तक वर्णन करने की आवश्यकता भी नहीं। मैं यही सोचूं कि हाँ अगर मैं इसका वर्णन करूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, पर उस समय मैं अपने दिल पर हाथ रखूं कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो क्या मैं अच्छा पसंद करती कि मेरे विषय में भी लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। तो अगर मुझे वो बात पसंद नहीं तो फिर मैं दूसरे की निंदा क्यों करूँ, क्योंकि जो कर्म मैं दूसरे के लिए नहीं चाहती कि वो करे तो फिर मैं भी ना करूँ। जो कर्म मैं दूसरे से चाहती हूँ तो वह कर्म मैं भी करूँ। डू अन टू अदर्स एज यू विश दैट अदर्स डू अन टू यू। तो इसीलिए हमें केवल बुरा सुनना, देखना या बोलना ही नहीं है, लेकिन साधारण भी सुनना, देखना या बोलना नहीं है, और सोचना भी नहीं है। क्योंकि जब सोचेंगे तो देखेंगे और बोलेंगे ज़रूर, तो सोचेंगे ही नहीं तो देखना और बोलना तो होगा ही नहीं। इसीलिए पहले बुरा सोचो भी नहीं तो बुरा करो भी नहीं, वही करो जो आप सचमुच अपनी आत्मा को कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो आप उचित समझते हो वही करो। तो हम यही आपसे निवेदन करेंगे कि मन के संकल्पों की बचत कीजिए, श्वास की बचत कीजिए, आत्मिक और शारीरिक शक्ति की बचत कीजिए, क्योंकि ये बहुत अमूल्य खजाना है। बीती बातों का चिंतन मत कीजिए, आने वाले के विषय में चिंता न कीजिए, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाइए, तो भूत और भविष्य श्रेष्ठ है ही, उसमें कल्याण समाया हुआ है। इन बातों को बुद्धि में रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते जाइए, परमात्मा को अपना मन अर्पित करते जाइए, तो देखिए परमात्मा आपकी जीवन को कितना श्रेष्ठ और सुंदर बना देंगे। तो आपके संकल्प भी श्रेष्ठ, वचन भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ, और फलस्वरूप जीवन भी आपकी श्रेष्ठ बन जाएगी। ओम शांति।